समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। 7 अप्रैल मंगलवार की इस नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर न्यूज मैगजीन आज सवेरे में आप सभी का स्वागत है। रोजाना की तरह हम एक बार फिर आ गए हैं लेकर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं शगुन। गुड मॉर्निंग शगुन।
Good morning, Sir Firozi, and to our listeners, Namaskar, good morning, good day, everybody. Here we are with our daily news magazine program, Aaj Savere, me, Shagun Chopra, and Sir Firozi. Well, we both will begin with the headlines first, and then we'll also explore the history for today and Metro City updates as well. Today, it's 7th of April. First, let's begin with the headlines.
Bilkul, Shagun. तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इसके साथ ही भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। कल रात सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा यात्रा में निर्णायक कदम उठा रहा है जो देश के तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाता है। एक रिपोर्ट।
तमिलनाडु के कल्पकम में स्थित 500 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह भारत की दीर्घकालिक परमाणु रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्रिटिकलिटी वह अवस्था है जब कोई परमाणु रिएक्टर स्वसंचालित श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त कर लेता है। यह पूर्ण विद्युत उत्पादन से पहले का महत्वपूर्ण चरण होता है जो दर्शाता है कि रिएक्टर का कोर निर्धारित डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा है। इस परियोजना का निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी रूप से किया गया है जिसमें 200 से अधिक भारतीय उद्योगों का योगदान रहा है। यह भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की मुहिम के अनुरूप है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
कैंपेनिंग फॉर द असेंबली इलेक्शंस इन असम, केरलम एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी ड्रॉज टू अ क्लोज दिस इवनिंग। इन द फाइनल आवर्स टुडे, टॉप लीडर्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज विल बी मेकिंग कंसर्टेड एफर्ट्स टू कनेक्ट विद वोटर्स and strengthen their support base across these regions. Polling for 126 seats in Assam, 140 in Keralam and 30 seats in Puducherry will be held in a single phase on Thursday. In Assam, on the final day of the campaigning today, senior BJP leader Amit Shah is set to address three rallies in Barak Valley region. Other political parties, including the Congress, will also be holding multiple rallies across the state as parties make their last push to reach voters.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित किया गया है। विधि मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने कल इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी। लोकसभा और राज्यसभा ने पिछले सप्ताह बजट सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया था।
The Indian Army has unveiled a technology roadmap for unmanned aerial system and loitering munitions in New Delhi. This initiative is a significant step towards providing long-term visibility of Indian Army's requirement in the field of unmanned aerial systems. The Indian Army said that the roadmap provides clear, actionable visibility to industry, academia, and research and development institutions to channelize investments and technological efforts towards priority areas identified by it.
In the last 1.5 years, we have moved on and we've covered a large distance. I remember when we had the first set of discussions and thereafter we called you all for a field demo, there was not even a single drone that could pass the EW test. We moved on. There are a good number of indigenous solutions that have been produced. EP that we had, EP 2025, and fast track procurement shows that Indian industry is growing at a good pace.
खान मंत्रालय ने खनिज रियायत नियमों में संशोधन अधिसूचित किया है। इससे खनन पट्टे के आसपास के क्षेत्र और उससे जुड़े खनिजों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। संशोधित नियमों में क्षेत्र विस्तार आवेदन के निस्तारण के लिए सरल और समयबद्ध प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार के लिए ये अनिवार्य किया गया है कि वो आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर अनुमति प्रदान करें। मंत्रालय ने यह भी बताया कि नियमों में किसी अन्य खनिज जिनमें गौण खनिज भी शामिल है को खनन पट्टे में शामिल करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। मंत्रालय के अनुसार संशोधन में उन गौण खनिज पट्टों में प्रमुख खनिजों को शामिल करने की प्रक्रिया भी तय की गई है जो खान और खनिज अधिनियम 2025 से पहले निष्पादित किए गए थे।
Now let's tell you about NASA's Artemis 2 mission, which is traveling around the far side of the moon, and it has set a new record for the farthest distance humans have traveled from Earth. The Orion spacecraft, carrying 4 astronauts, it reached about 252,752 miles from Earth during a flyby of the moon's far side, surpassing the Apollo 13 record of 248,655 miles set in 1970. American space agency NASA, in a social media post, said the crew is now on a 7-hour lunar flyby, observing the moon's far side and studying features like Rhino Gamma and the Glushko crater.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर ईरान समझौता करने में विफल रहता है और हॉर्मूज जल डमरू मध्य तय समय सीमा से पहले नहीं खोलता तो अमेरिका एक ही रात में ईरान को तबाह कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय समयानुसार कल सुबह 5:30 बजे तक समझौते पर निर्णय की समय सीमा तय की है। इस बीच ईरान ने युद्ध विराम के अमरीकी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है और शत्रुता समाप्त करने, पुनर्निर्माण सहायता और प्रतिबंध हटाने की मांग की है।
On to sports now. In IPL cricket, the match between Kolkata Knight Riders and Punjab Kings was abandoned due to rain at Eden Gardens in Kolkata last night. And in today's fixture, Rajasthan Royals will take on Mumbai Indians at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati at 7:30 PM Indian Standard Time.
श्रोताओं, अब आपको देंगे महानगरों का हाल। शुरुआत करेंगे चेन्नई से। शगुन,
एग्जैक्टली, वी आर हेडिंग नाउ टू चेन्नई। इन तमिलनाडु अ टोटल अमाउंट ऑफ 170 crore रुपीज वर्थ कैश, लिकर, प्रेशियस मेटल एंड फ्रीबीज एंड अदर वैल्यू बाय द इलेक्शन अथॉरिटीज इट वाज सीज्ड। द इलेक्शन कमीशन हैज सेड दैट नो पॉलिटिकल पार्टी, कैंडिडेट, organization or person shall publish any advertisement in the print media on the poll day and one day prior to the poll day unless the contents are pre-certified by the Media Certification and Monitoring Committee at the state. Individuals or contesting candidates can apply for certification of advertisements with district MCMC. So all registered political parties headquartered in a state or in a union territory can apply for certification of such advertisements with the state-level MCMC. Applicants seeking pre-certification for political advertisements in print media must apply to the MCMC not later than 2 days prior to the proposed date of publication of the advertisement. So MCMC shall also keep a strict vigil on suspected cases of paid news in the media and then take suitable action. Over to you, Sir Firozi, for Delhi's updates.
बिल्कुल शगुन, शुरुआत कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने 3 निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके तहत दिल्ली के 6 फ्लाईओवर्स के नीचे खाली स्थानों और फुटपाथों को साफ, सुंदर और उपयोगी बनाया जाएगा। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पब्लिक और निजी सेक्टर के साथ मिलकर राजधानी को अधिक सुंदर, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने गोदामों से सीधे एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। तेल विपणन कंपनियों ने सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा है कि ऐसी बिक्री गैर कानूनी मानी जाएगी और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने रसोई गैस को आम लोगों के लिए, विशेषकर उनके लिए जिनके पास समुचित पते का प्रमाण नहीं है, अधिक सुलभ बनाने के लिए पूरे शहर में 5 किलो के सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ा दी है। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के बिक्री केंद्रों पर 11 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए भी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। और शगुन, आपके पास क्या जानकारी है बेंगलुरु से?
राइट सर फिरोजी, बिगिनिंग विद दैट फर्स्ट अपडेट, कर्नाटका सिक्योर थर्ड प्लेस एट द इंडिया स्किल्स 2025-26 नेशनल कॉम्पिटिशन हेल्ड इन ग्रेटर नोएडा। So they finished, Karnataka finished behind Odisha and Tamil Nadu. There were 48 participants across 32 skills. The state won 29 honors in areas like cloud computing, cyber security, additive manufacturing and visual merchandising. Karnataka Skill Development Corporation trained students and they earned 10 gold, 6 silver, 6 bronze and 7 medallions for excellence. Winners will now train for selection to represent India at World Skills International in Shanghai. Another update there, EV users on Karnataka highways may soon access charging stations every 60 to 70 kilometer as BESCOM partners with KRDCL to expand infrastructure. The project will cover KRDCL's 3,000 kilometer network with chargers at toll plazas, bus bays and truck laybys. The move comes amid fuel supply concerns linked to the West Asia conflict. Now we'll head to
मुंबई। विरार दहानू रोड चौगनी परियोजना के तहत क्षमता विस्तार के प्रमुख कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विरार स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 3A और 4A को 6.5 मीटर से बढ़ाकर 10.5 मीटर कर दिया गया है और इन्हें 15 कोच वाली उपनगरीय लोकल ट्रेनों के लिए विस्तारित किया गया है। इसके अतिरिक्त परिचालन दक्षता को और बढ़ाने के लिए एक नए होम प्लेटफॉर्म 5A का निर्माण किया गया है। कल एक सफल ट्रायल रन भी आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार मुंबई मेट्रो नेटवर्क के क्षमता विस्तार के अंतर्गत आज 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। मेट्रो लाइन 9 ठाणे जिले का पहला मेट्रो कॉरिडोर होगा, जबकि लाइन 2B चेंबूर और आसपास के इलाकों सहित हार्बर लाइन के प्रमुख क्षेत्रों तक मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार करेगी। इस विस्तार के साथ मेट्रो लाइन 2A और मेट्रो लाइन 7 स्वतंत्र कॉरिडोर के रूप में संचालित होंगी। हालांकि लाइन 7 लाइन 9 के साथ एकीकृत रूप से चलेगी। और शगुन, अब आपके पास से हैदराबाद की जानकारी ले लेते हैं।
राइट सर फिरोजी, हियर एग्रीकल्चर मिनिस्टर टी नागेश्वर राव एम्फसाइज दैट सॉयल हेल्थ ट्रांसेंड्स क्रॉप यील्ड्स डायरेक्टली इंपैक्टिंग एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी and human health. Speaking as the chief guest at a 2-day training program organized by ICRISAT and the State Agriculture Department in Patancheru, he called for a grassroots movement to restore soil fertility. The minister noted that healthy soil is essential for nutritional security and overall prosperity, urging every citizen to take responsibility for its preservation. As part of the Telangana Rising Vision 2047, the government aims to reduce cultivation costs while boosting farmer income. Currently, 120 farmers from the Kudangal constituency are being trained as soil health volunteers. Minister Rao encouraged farmers to reduce their reliance on chemical fertilizers and instead adopt organic practices such as cultivating crops like green gram.
और अब रुख करते हैं अपने आखिरी महानगर की ओर, बात करते हैं कोलकाता की। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल विधानसभा चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों का दौरा करेंगे। श्री अग्रवाल ने बताया कि बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण सहित तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीधी बैठकें होंगी। इसका उद्देश्य राज्य भर में बुनियादी ढांचे की कमियों या विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना और उनकी पहचान करना है। श्रोताओं, अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी। शुरुआत कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में भी आंधी के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहेगा। और शगुन आपके पास मौसम की क्या जानकारी है?
एंड सर फिरोजी, इन चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद इट विल बी मच द सेम लाइक यू डिस्क्राइब्ड फॉर दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता. चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और इवन थंडर शावर्स. मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस. बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स अगेन. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum temperature, it will be around 35 degrees Celsius in Bengaluru. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky again and there is a possibility of development of thunder lightning. The temperature will be, minimum temperature first will be around 26 degrees Celsius and maximum temperature will be around 37 degrees Celsius in Hyderabad. Sir Firozi.
और शगुन, अब वक्त आ गया है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि आज यानी 7 अप्रैल की तारीख इतिहास में क्यों दर्ज हो गई. तो शगुन, सबसे पहले जिस बात का जिक्र करेंगे वो है साल 1948, जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई और इसीलिए हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है. ये दिन WHO द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विज्ञान आधारित स्वास्थ्य नीति अपनाने पर जोर देने के लिए मनाया जाता है. ये दिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने, बीमारियों की रोकथाम और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करता है. इस अवसर पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर, जागरूकता अभियान, वेबिनार और रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.
Well, yes, Sir Firozi, health is true fortune. So today the world comes together to observe World Health Day. This day reminds us that health is not a luxury but a necessity.
बिल्कुल शगुन.
And this is celebrated every year, as Sir Firozi told us, 7th April, and this occasion marks the establishment of the World Health Organization. So in modern life, we often measure success through achievements, productivity, but true success begins with good health. As the famous saying goes, well, very common as well, health is the greatest wealth. When our body and mind are balanced, we think better, we work better, and live better. So World Health Day, Sir Firozi, it encourages us to adopt simple yet powerful habits, which can be staying active, eating mindfully, also very important, caring for your mental health and supporting one another as we are doing right now.
Bilkul.
As another reminder says, take care of your body. It's the only place you have to live. So always take care of your body. The World Health Day 2026 theme, let's tell our listeners about it. Together for health, stand with science. And this highlights the importance of scientific knowledge, collective responsibility and global cooperation in building healthier societies. So today, it is not just about awareness, but about action. Choosing wellness every single day.
बिल्कुल शगुन, ये तो थी बात विश्व स्वास्थ्य दिवस की. और अब रुक कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं इतिहास में दर्ज कुछ और घटनाओं की.
जी, we'll take you way back in time, listeners, in the year 1348. Charles University was founded in Prague by Charles IV, becoming the first university in Central Europe.
और साल 1795 में फ्रांस ने मीटर को आज ही के दिन आधिकारिक लंबाई माप इकाई के रूप में अपनाया, जिससे आधुनिक मापन प्रणाली की नींव पड़ी.
How great! In 1896, Edwin Flack won the 1500 meter and 800 meter races at the first modern Olympic Games in Athens.
आज ही के दिन 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की.
इन 1923, के विनफील्ड ने परफॉर्म्ड एन अर्ली ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन अंडर लोकल एनेस्थेसिया एंड बेथ इज़राइल हॉस्पिटल.
आज ही के दिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ओकिनावा की लड़ाई में जापान का विशाल युद्धपोत यामातो डुबो दिया गया.
In 1953, Sweden's Dag Hammarskjöld was elected Secretary General of the United Nations.
आज ही के दिन 1963 में यूगोस्लाविया के नए संविधान के अंतर्गत जोसेफ ब्रोज टीटो को आजीवन राष्ट्रपति घोषित किया गया.
On 7th April 1994, the Rwandan genocide began in Rwanda, one of the worst humanitarian tragedies of the 20th century. In 1999 now, the World Trade Organization ruled in favor of the United States in a major international banana trade dispute with the European Union.
आज ही के दिन 2001 में नासा ने मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, जिसने मंगल ग्रह से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी पृथ्वी तक भेजी.
How great. In 2008, the first India-Africa Forum Summit began in New Delhi, strengthening India-Africa relations.
और श्रोताओं, अब समय है उन खास महान व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज जयंती, पुण्यतिथि या जन्मदिवस है. आज सबसे पहले याद कर रहे हैं पंडित रविशंकर को, जिनकी आज जयंती है. ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्कृष्टता के सबसे बड़े उद्घोषक रहे. एक सितार वादक के रूप में इन्होंने ख्याति अर्जित की. रविशंकर और सितार मानो एक दूसरे के लिए ही बने हों. वो इस सदी के सबसे महान संगीतज्ञों में भी गिने जाते हैं. रविशंकर को विदेशों में बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई. वे अत्यंत लोकप्रिय और सफल रहे. रविशंकर के संगीत में एक प्रकार की आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है.
Soulful. We are remembering Ravi Shankar. Well, he spent his youth performing across Europe and India as a member of his brother Uday's dance troupe. So he gave up dancing in 1938 to study the sitar under the legendary court musician Ustad Alauddin Khan. After completing his studies, he began giving recitals all over India, working as a composer, writing music for theatre and several of Satyajit Ray's films. And he also continued his engagement with the West and Western music in the 70s and 80s through further touring, writing concerts for sitar, orchestra as well. And listeners, we have an excerpt from an interview where he tells us about raag and how you should approach raag.
जब नया नया मैं शुरू किया, अब काफी लोग के ये गलत फहमी है कि राग जब तक एक घंटा डेढ़ घंटा नहीं बजे तब तक शुद्ध नहीं है. ये बिल्कुल गलत ख्याल है. आप देखिए हमारे पुराने जितने जिसका भी नाम, हमारे गुरु से लेकर पंडित ओंकार नाथ देखिए, अब्दुल करीम खान साहब देखिए, फयाज खान साहब देखिए, इनायत खान सितारी देखिए, और बड़े अच्छे अच्छे जितने गुणी लोग हैं, अपना 3.5 मिनट का रिकॉर्ड भी बना गए हैं जो कि इमॉर्टल है, जिसको सुन के हम अभी भी ताज्जुब होते हैं. उनका लॉन्ग प्लेइंग किसी किसी का भी है. आमिर खान साहब हुए, बड़े गुलाम अली खान साहब हुए. तो इसका मतलब यही नहीं है कि एक समय का बहादुरी देखा कि एक घंटा हम दो घंटा बजा सकते हैं दरबारी काना, तो वो ग्रेट हो गया.
You can also listeners find it on our Prasar Bharati archive. It's available there as well.
श्रोताओं, पंडित रविशंकर को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
यस सर फिरोजी, द 1960s एक्चुअली आई वांट टू मेंशन हियर. सो शंकर राइज टू बिकम इंडियाज प्रीमियर म्यूजिकल एम्बेसडर, ब्रिंगिंग इट्स क्लासिकल ट्रेडिशन टू यूरोप एंड अमेरिका थ्रू टीचिंग, टूरिंग एंड हिज एसोसिएशन विद वेस्टर्न म्यूजिशियंस. आई लाइक टू नेम अ फ्यू: जॉन कोल्ट्रेन, violinist Yehudi Menuhin, and of course George Harrison of the Beatles. So by the end of the 60s, he was arguably the most famous Indian in the world. Listeners, today let's also now tell you about Billie Holiday. Billie Holiday's birth anniversary today. A pioneering American jazz and swing singer nicknamed Lady Day. She's actually renowned for her emotive voice, which we'll be listening to, and her very innovative vocal style. Of course, we'll listen to that as well. So her influence on music remains profound, shaping generations of singers across genres. The song which we chose to make you listen to, this is Blue Moon. Have a listen.
You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue Moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me.
अब हम याद कर रहे हैं कश्मीरी लाल जाकिर जी को, जिनकी आज जयंती है। ये प्रख्यात उर्दू कवि, उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। कश्मीरी लाल जाकिर हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक भी थे। हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय उर्दू मुशायरों की परंपरा के सूत्रधार यही हुआ करते थे। कश्मीरी लाल जाकिर ने उर्दू, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में 100 से ज्यादा किताबें लिखी। इनकी रचनाएं उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई।
टुडे ऑल्सो लिसनर्स, लेट्स टेल यू दैट इट्स जैकी चैन्स बर्थडे, सो एट अ फॉर्मेटिव इयर्स ऑफ हिज लाइफ ही लर्न द एक्रोबैटिक्स, मार्शल आर्ट्स, एक्टिंग, सिंगिंग दैट वुड लेटर हेल्प हिम टू बिकम इंटरनेशनल सुपरस्टार। सो ही गेन्ड रेपुटेशन एज अ टैलेंटेड फियरलेस स्टंटमैन एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स व्हेन ही बिगैन आफ्टर दैट ही स्विफ्टली क्लाइम्ब द लैडर ऑफ सक्सेस एंड वाज सून एक्टिंग, डायरेक्टिंग एंड ऑल्सो कोरियोग्राफिंग स्टंट्स फॉर डजन्स ऑफ films, and he has received hundreds of awards for his acting, directing, writing and stunt work, which includes Academy Award as well.
आज जानकी वल्लभ शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। ये प्रसिद्ध कवि थे। इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उन थोड़े से कवियों में रहे जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मान सम्मान प्राप्त हुआ। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिन्दी में आए। और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जितेंद्र को। ये हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, फिल्म निर्माता, बालाजी टेलीफिल्म्स, बालाजी मोशन पिक्चर्स और एएलटी एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष हैं। ये भारतीय सिनेमा में अपनी नृत्य कला के लिए जाने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम रवि कपूर है। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1959 में वी शांताराम की फिल्म नवरंग से की, जिसमें उन्हें छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर मिला।
कल बेले देखे जवानी करेले देखे हसीनों के मेले देखे दिल पे तू ही छा गया हो, तू ही छा गया हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ गया।
Listeners, we know Jitendra for his energetic dance moves, charming screen presence. So this earned him the title Jumping Jack of Bollywood. So his career actually took off with Geet Gaya Pattharon Ne, and this solidified with Farz. And throughout the 1970s and throughout the 1980s, he delivered hits such as Pariche Himmatwala, and he balanced his career with family life as well. And Jitendra's contribution to Bollywood, it goes beyond acting as well. His films, they brought entertainment and joy to millions. So even today we admire him for his style, his discipline and contributions to the film industry. Now Sir Firozi, let's listen to his voice in the form of this dialogue.
Tum meri ganga nahi ho, meri ganga ki boond boond se prem ka amrit chhalakta tha, lover lalaj ka vish nahi, उसकी लहर लहर में त्याग और कर्तव्य का मीठा संगीत बहता था। इस शास्वार्थ की गालियां नहीं। अरे अरे, तूने कागज के चंद टुकड़ों के लिए वो दौलत गवा दी जिसके रहते तू संसार की सबसे बड़ी दौलतमंद थी, प्रेम की दौलत, आदर और सम्मान की दौलत, गृहस्थी के सुख की दौलत। अरे ये सब क्या कम था।
वर्ष 1967 में रविकांत नगाइज द्वारा निर्देशित जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म फर्ज प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में जितेंद्र ने नृत्य कलाकार की भूमिका निभाई। इस फिल्म के बाद जितेंद्र को जंपिंग जैक कहा जाने लगा। डांसिंग स्टार की भूमिका जिस तरह इन्होंने निभाई, कई और अभिनेताओं ने भी इस भूमिका को अपनी फिल्मों में भुनाया।
ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है,
अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है।
गुजारी साथ हमने कई रातें,
अभी न जाना कोई तराना कोई फसाना अभी सुनाना है।
ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो।
श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के साथ दीजिए इजाजत सरफिरोजी और शगुन चोपड़ा को। कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
We thank you so much listeners for tuning in and we hope you have a wonderful day ahead.
Namaskar.